दिन भर 24 नवंबर रविवार स्वीकार करें मोहम्मद शाहिद का नमस्कार। महाराष्ट्र का सियासी तूफान जारी, सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों का समर्थन पत्र और राज्यपाल की चिट्ठी मांगी।
देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने जो लेटर ऑफ सपोर्ट दिया गवर्नर को, वो प्रोड्यूस करें और गवर्नर की जो भी कम्युनिकेशन है वो सारे लेटर्स कल 10:30 बजे कोर्ट में प्रोड्यूस करें।
शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस का दावा, विश्वास मत के दौरान गिरेगी बीजेपी की सरकार।
जिस दिन फ्लोर टेस्ट होगा विधानसभा का, ये साबित हो जाएगा कि भाजपा और अजीत पवार जी के पास बहुमत नहीं।
और अपने पहले डे नाइट टेस्ट मैच में भारत ने बांग्लादेश को दी मात। होंगी और भी खबरें, लेकिन सबसे पहले सुनेंगे विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार तन्वी से। महाराष्ट्र के सियासी ड्रामे पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई, जिसमें दोनों पक्षों ने अपने पास बहुमत होने का दावा किया है। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन ने देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को शपथ दिलाए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ ने फडणवीस और पवार को विधायकों के समर्थन का पत्र और राज्यपाल की चिट्ठी पेश करने को कहा है। इस मामले में केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार, फडणवीस और अजीत पवार को नोटिस भेजा गया है। इस मामले में अगली सुनवाई कल सुबह 10:30 बजे। उधर मुंबई में दिन भर बैठकों का दौर चलता रहा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता कैलाश चंद्र जोशी का आज निधन हो गया। 90 साल के जोशी का निधन लंबी बीमारी के बाद भोपाल के एक अस्पताल में हुआ। आपातकाल के दौरान 19 महीने तक जेल में रहने वाले जोशी मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। 1977 में उन्होंने जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के तौर पर सरकार बनाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैलाश जोशी के निधन पर ट्वीट कर दुख जताया है। हांगकांग के स्थानीय जिला परिषद चुनाव में बड़ी संख्या में लोगों ने आज हिस्सा लिया। इस चुनाव को स्थानीय शासन प्रमुख कैरी लैम के लिए जनमत संग्रह के तौर पर देखा जा रहा है। रविवार की सुबह से पोलिंग स्टेशनों के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। मतगणना के पहले 3 घंटे में ही 2015 की तुलना में दोगुना मतदान हो चुका था। हांगकांग में बीते कुछ महीनों से लगातार हिंसक विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। ये प्रदर्शन विवादित प्रत्यर्पण बिल को लाने के बाद शुरू हुए थे। विपक्ष का भरोसा है कि लोगों का गुस्सा चुनाव नतीजों में भी दिखेगा। उधर कैरी लैम ने भी आम मतदाताओं पर भरोसा जताया है।
I appeal to all registered voters in Hong Kong to come out to cast.
मैं सभी लोगों से अपील करती हूं कि वे अपना वोट दें और अपनी पसंद का नेता चुनें, ताकि वे आपके हितों के मुताबिक जिला परिषद में काम कर सकें। स्थानीय जिला परिषद का अगला कार्यकाल 1 जनवरी 2020 से शुरू हो रहा है। हांगकांग की सरकार में जिला परिषद की भूमिका अहम है। मैं लोगों को भरोसा दिलाती हूं कि जिला परिषद को सरकार का साथ मिलता रहेगा। हम उन्हें ज्यादा संसाधन मुहैया कराएंगे और उनकी समस्याओं को ध्यान से सुनेंगे। ये थे हांगकांग की मुख्य प्रशासक कैरी लैम के शब्द। यूरुग्वे की जनता राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर का मतदान कर रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस चुनाव के बाद देश भर में बीते 15 सालों से चला आ रहा सेंटर लेफ्ट का शासन का दौर खत्म हो जाएगा। इस बार कंजर्वेटिव नेता लुई लाकोले पाऊ को फेवरेट माना जा रहा है। उन्हें पिछले महीने हुए पहले राउंड के चुनाव में 5 राइट विंग पार्टियों का समर्थन मिला था। पोप फ्रांसिस ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को मानवीय गरिमा के खिलाफ अपराध बताया है। उन्होंने हिरोशिमा में आज परमाणु हथियारों के उन्मूलन के लिए एक भावुक अपील की। हिरोशिमा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बमों द्वारा नष्ट किए गए 2 जापानी शहरों में से एक था। इससे पहले पोप ने नागासाकी का दौरा भी किया, जहां सैकड़ों लोग बारिश में भी उन्हें सुनने के लिए आए। पोप फ्रांसिस ने कहा कि परमाणु हथियार सुरक्षा, शांति और स्थिरता लाने के लिए उपाय नहीं है। उन्होंने कहा, वो शस्त्र जो संपूर्ण विनाश कर सकते हैं केवल भय और अविश्वास को बढ़ावा देते हैं।
Con convicción, deseo reiterar que el uso de la energía atómica...
मैं विश्वास के साथ ये दोहराना चाहता हूँ कि युद्ध के उद्देश्य से परमाणु ऊर्जा का उपयोग आज अपराध से कहीं अधिक है। ये न केवल मानव गरिमा के खिलाफ बल्कि हमारे पूरे भविष्य के खिलाफ है। युद्ध के उद्देश्य से परमाणु ऊर्जा का उपयोग वैसे ही अनैतिक है जैसे कि परमाणु हथियारों पर किसी भी देश का कब्जा होना। ये थे पोप फ्रांसिस के शब्द। फ्रांस में महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा यानी फेमिसाइड के अपराधों के चलते वहां के लगभग 70 शहरों में आज प्रदर्शन आयोजित किए गए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर इस समस्या के प्रति अपने आंखें मूंदने का आरोप लगाया है। घरेलू हिंसा से निपटने के लिए फ्रांस की सरकार कल कुछ उपायों की घोषणा कर सकती है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार स्वीकार करें मोहम्मद शाहिद का। ये बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ हमारी वेबसाइट bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी लाइव सुन रहे हैं। महाराष्ट्र में कल बनाई गई सरकार का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी एनसीपी और कांग्रेस की याचिका पर हुई आज सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को नोटिस जारी किया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एनवी रमन्ना, अशोक भूषण और संजीव खन्ना की बेंच ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का सरकार बनाने का निमंत्रण पत्र और देवेंद्र फडणवीस का समर्थन पत्र कल सुबह 10:30 बजे तक पेश करने को कहा है। सुनिए पूरी रिपोर्ट बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद से।
महाराष्ट्र में जारी सियासी घटनाक्रमों को लेकर आज सुबह सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी थीं। जस्टिस रमन्ना, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने सुनवाई शुरू की। शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि फडणवीस सरकार को बहुमत साबित करने के लिए तुरंत फ्लोर टेस्ट करने का आदेश जारी करे। बीजेपी विधायकों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी बोले, मामले में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी एक पार्टी हैं, इसलिए उन्हें नोटिस जारी किया जाना चाहिए और उनका पक्ष सुनना चाहिए। उन्होंने जिरह करते हुए आगे कहा, कोर्ट को आज आदेश देने की जरूरत नहीं है, राज्यपाल का आदेश गैर कानूनी नहीं था। अदालत ने इस केस में केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को नोटिस जारी किया। साथ ही कोर्ट ने राज्यपाल को फडणवीस की तरफ से मिले लेटर ऑफ सपोर्ट यानी समर्थन पत्र और उनका आदेश भी मांगा है। सुनवाई के बाद कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मीडिया से बातें करते हुए आज की सुनवाई पर यूं प्रतिक्रिया दी।
कल जब सारा रिकॉर्ड आएगा तो अदालत उसका संज्ञान लेकर दोनों पक्षों की बहस सुनकर इस पर निर्णय करेगी। हमें ये उम्मीद है कि संविधान की परिपाटी को धूमिल किया है भाजपा और अजीत पवार जी ने एक ऐसी सरकार बनाकर जिनके पास ना विधायक हैं और ना बहुमत। ये एक इललेजिटिमेट सरकार है, एक नाजायज सरकार है और जिस दिन फ्लोर टेस्ट होगा विधानसभा का, ये साबित हो जाएगा कि भाजपा और अजीत पवार जी के पास बहुमत नहीं।
बीजेपी के खेमे में आत्मविश्वास काफी बुलंद है। उनका ये मानना है कि अगर अदालत ने फ्लोर टेस्ट का आदेश जारी किया तो फडणवीस सरकार बहुमत साबित कर दिखाएगी। महाराष्ट्र बीजेपी के प्रवक्ता माधव भंडारी ने कहा,
राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो कूटनेता है विधानसभा में अजीत पवार, माननीय अजीत पवार, उन्होंने समर्थन का पत्र दे दिया है और आने वाले एक हफ्ते में विधानसभा में सारा चित्र स्पष्ट हो जाएगा।
अब सवाल ये है कि अदालत तुरंत फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दे सकती है? क्या फडणवीस सरकार बहुमत जुटा सकेगी? बीबीसी मराठी के संपादक आशीष दीक्षित इन सवालों का जवाब यूं देते हैं।
पहले दो इंस्टेंसेस में आई थिंक उसमें से एक कर्नाटक था जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फ्लोर टेस्ट तुरंत की जाए, लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है ये अभी तो बताना बहुत मुश्किल है क्योंकि दोनों केसेस काफ़ी अलग है। लेकिन अगर फडणवीस को कहा जाए कि वो तुरंत फ्लोर टेस्ट करें तो उनके पास अभी तो नंबर दिख नहीं रहे हैं, तो इसलिए उनके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अगर उन्हें ज़्यादा समय मिलता है, जो उनकी मांग है, तो वो पूरी कोशिश कर रहे हैं और MLAs अपने साथ लाने की। और जो बीजेपी के लीडर हैं नारायण राणे, उन्होंने तो BBC से बात करते हुए खुल के कह दिया कि बाज़ार में बहुत सारे MLAs अवेलेबल हैं। तो इसका मतलब है कि बीजेपी बिल्कुल कोशिश कर रही है अलग अलग पार्टियों से MLAs अपने साथ लाने की। लेकिन अगर वो समय कम हो जाता है तो फिर उन्हें बहुत मुश्किल होगा 145 का आंकड़ा पाना।
कांग्रेस, NCP, राष्ट्रवादी कांग्रेस के गठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार उद्धव ठाकरे हैं और गठबंधन को अब भी उम्मीद है कि सरकार उनकी ही बनेगी, क्योंकि उनके अनुसार फडणवीस फ्लोर टेस्ट में 145 विधायकों का समर्थन हासिल नहीं कर सकेंगे। जुबैर अहमद, BBC, दिल्ली।
आज शाम में बीजेपी विधायकों की बैठक हुई। बैठक के बाद बीजेपी नेता आशीष शेलार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास बहुमत है और वो विश्वास मत जीत कर दिखाएगी और विधायकों के खरीद फरोख्त के आरोप निराधार हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा।
मैं एक ही बात बहुत नम्रता से कहूंगा कि आने वाले विश्वास मत दर्शक ठहराव को हम बहुमत से मंजूर करेंगे और अगर महाराष्ट्र में कोई ऑपरेशन चल रहा है तो ऑपरेशन देवेंद्र और ऑपरेशन अजीत पवार है।
वहीं उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित बीजेपी के कई नेताओं को धन्यवाद दिया है। इसके बाद उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि वो एनसीपी में हैं और शरद पवार उनके नेता हैं। इसके बाद शरद पवार का भी बयान आ गया है और उन्होंने कहा है कि अजीत पवार का बयान गुमराह करने वाला है। आज दिन में मुंबई में लगातार बैठकों का दौर चलता रहा और अलग अलग बयान आते रहे। रुख करते हैं सीधे मुंबई का, जहाँ बीबीसी संवाददाता मयूरेश कौन्नूर मौजूद हैं। जी मयूरेश, आप हमें सुन पा रहे हैं?
जी बिल्कुल
जी। मयूरेश हमें बताएं आज मुंबई में क्या कुछ हुआ, क्योंकि दिल्ली में तो यहाँ हम देख ही चुके हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा, लेकिन और बहुत कुछ घट रहा है मुंबई में।
जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की तरफ महाराष्ट्र की मुंबई की निगाहें थी ही, लेकिन मुंबई में बहुत कुछ हो रहा था। उद्धव ठाकरे जो है वो अपने जो सारे शिवसेना के MLAs हैं उनको उनसे बात की, उनको पकड़ के वो रखे हैं। और सिर्फ वही नहीं, तो उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे तो एनसीपी के MLAs जहाँ पे एक होटल में उनको कल से रखा गया है, करीब 48 MLA ऐसा पता चल रहा है, तो उनसे भी उन्होंने जाकर मुलाकात की। कांग्रेस ने भी एक ही होटल में अपने MLAs दूसरी जगह पे रखे हुए हैं अंधेरी में, तो उनसे भी वो लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। लेकिन दूसरी ओर एनसीपी के कुछ नेताओं ने आज अजीत पवार को मनाने की भी कोशिश की। आज सुबह एनसीपी के कुछ वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल, जो अब विधायक दल के नेता बन चुके हैं अजीत पवार को वहां से निकालने के बाद, वो उनके घर गए थे, उनको बता रहे थे कि आप वापस आइए। उनको कुछ कन्विंस करने की कोशिश एनसीपी की तरफ से अभी भी चल रही है। लेकिन उसी के बाद अजीत पवार का दोपहर में ट्वीट आया और उन्होंने कहा कि एनसीपी और बीजेपी की ये कोअलिशन है और मैं एनसीपी के साथ हूँ, शरद पवार मेरे नेता हैं। तो उसके बाद ये तो पता चल गया कि अजीत पवार अपना मन बना चुके हैं कि वो वापस नहीं आ रहे, लेकिन वो खुद को या उनके गुट को अपना एनसीपी जो है असली एनसीपी वो बता रहे हैं। और उसके बाद से अचानक गर्मा गर्मी शुरू हो गई। शरद पवार को बताना पड़ा ट्वीट करके कि ये गलत फहमी है और हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। इस तरह का पॉलिटिक्स अब भी चल रहा है और एनसीपी अपने विधायकों को साथ में लेके हुए बैठे हैं। लेकिन जैसा जुबैर भी बता रहे थे कि कल कोर्ट में क्या होता है और उसके बाद अगर फ्लोर टेस्ट में होता जाता है तो फ्लोर टेस्ट में किसकी एनसीपी असली और किसकी नकली, इसके ऊपर सारी चीजें जो है वो अब निर्भर करेगी। अब ये पूरा लीगल बैटल भी बन चुका है राजनीति के साथ साथ।
जी उधर लीगल बैटल बन चुका है, आप कह रहे हैं मयूरेश, उधर बीजेपी के किस तरीके की रणनीति है? उसने भी अभी शाम में बैठक की है, उसके बाद बयान दिया गया है, आशीष शेलार ने बयान दिया है, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं?
बिल्कुल, बीजेपी की तो रणनीति लगता ये है और बातें ये हो रही है कि सिर्फ अजीत पवार ही उनकी रणनीति नहीं है। जैसा जिस दिन अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली उससे पहले कितने दिन ऐसे गए कि बीजेपी बिल्कुल शांत थी, उनके कैंप में कुछ भी हलचल नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन अचानक से ये सरप्राइज आ गया। तो क्या बीजेपी ऐसा कोई सरप्राइज प्लान कर रही है? कर नारायण राणे ने भी कहा कि बाजार में और भी विधायक हैं, तो उसके बाद क्या बीजेपी सिर्फ अजीत पवार के ऊपर निर्भर कर रही है या फिर शिवसेना और कांग्रेस उनके साथ भी जो उनके कोई नाराज विधायक हैं उनको अपने खेमे में लेने की कोशिश कर रही है, ऐसा पता चल रहा है। लेकिन बीजेपी के पास से आज सुबह भी और शाम में भी ये कॉन्फिडेंट बयान आ गए कि वो 170 का जो बहुमत है, इतना 170 विधायकों के साथ जब 45 की बहुमत वो दिखाई देगी।
जी उधर अब तक अजीत पवार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, सिर्फ उनको विधायक दल के नेता पद से हटाया गया है, इसके पीछे क्या आपको लगता है, क्या कारण?
इसके पीछे तो दो मायने हैं। एक तो अजीत पवार को अगर वो एनसीपी एक्सपेल करती है विधायक के तौर पर, तो जाहिर है कि उनकी विधायक यानी उनकी जो MLA जो है वो विधायक जो है वो बने रहेंगे और उनको वापस चुनाव के लिए नहीं जाना पड़ेगा। तो शायद एनसीपी ये देख रही है कि वो अजीत पवार को विधायक दल के नेता पद से हटाए लेकिन विधायक करके वो एक्सपेल ना करे, क्योंकि अगर चुनाव की चीज आती है तो उनको चुनौती दे जा सके। दूसरी बात यह है कि जैसे आज एनसीपी के कुछ नेता अजीत पवार को जाकर उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे, शायद एनसीपी अब भी ये मानकर चल रही है कि वो किसी तरीके से, जैसे सारे बाकी अजीत पवार के साथ जो MLA कल गए हुए थे शपथ ग्रहण समारोह के लिए, उनको उन्होंने जिस तरह वापस लाया, शायद वो अजीत पवार को भी वापस ले आ सके। लेकिन ये क्या होगा ये अभी तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन उनको विधायक के तौर पर इसीलिए एक्सपेल उन्होंने नहीं किया, ऐसा बताया जा रहा है।
बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मुंबई से बीबीसी संवाददाता मयूरेश कौन्नूर। महाराष्ट्र की आगे की राजनीति सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करती है। बीजेपी विधायकों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए वकील मुकुल रोहतगी का कहना था कि गवर्नर के फैसले की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। वहीं शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस की लगातार मांग थी कि जल्द से जल्द विश्वास मत होने दिया जाए। महाराष्ट्र की आगे की राजनीति किस दिशा में जाती दिख रही है, इस विषय पर मैंने वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी से बात की।
देखिए, ये बहुत ही अजीब किस्सा हुआ है महाराष्ट्र का। इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स हुए हैं और आज भी सिचुएशन ओपन है बिल्कुल। कल लग रहा था अमित शाह ने बाजी मार ली, कू कर दिया, सरकार आ गई, देवेंद्र फडणवीस स्वेयर इन कर लिया। आज उतना सर्टेन नहीं लग रहा है क्योंकि एनसीपी के कितने लोग शरद पवार के साथ हैं। अगर आज की रिपोर्ट मानी जाए तो तकरीबन 49 MLAs 54 में से लगता है उनके साथ हैं। तो इसका मतलब है अजीत पवार साइडलाइन हो गए हैं। लेकिन भाजपा जो चाह रही है कि ट्रस्ट वोट जल्दी नहीं हो और अभी कोर्ट ने उसमें व्यू नहीं लिया है, और मान लो कल कोर्ट कुछ कहता है तो दो दिन तो खत्म हो ही गए, दो तीन दिन और लगेंगे, प्रोटेम स्पीकर होगा, सबको दिलवाई दी जाएगी, तो मतलब एक आध दिन का ही फर्क होगा, वही 6-7 दिन तक चीजें आके बैठेंगी ट्रस्ट वोट की। बीजेपी चाहेगी सेना के लोगों को भी तोड़ना और कांग्रेस के लोगों को भी तोड़ना। क्या वो कर पाएगी कि नहीं, अजीत पवार कितने लोगों को तोड़ पाएंगे? अगर आज की स्थिति देखी जाए तो सब अपने अपने फ्लॉक को लेके है इंटैक्ट, तो मुश्किल लग रहा है नंबर्स का आना। लेकिन कल क्या होगा, बीजेपी के पास पावर है, पैसा है, सेंटर में है, वो स्टेट में भी अब स्वेयरिंग इन हो गई है, तो उसका फायदा तो होता ही है। पूरी सिचुएशन आज ओपन है, फ्लूइड।
मुकुल रोहतगी जो बीजेपी के विधायकों की तरफ से पेश हुए, उन्होंने कहा कि गवर्नर के फैसले को एक न्यायिक समीक्षा होना हो नहीं सकती उस फैसले की, क्या इस इन सब जैसी जो तर्क रखे गए सुप्रीम कोर्ट को, इनको आप किस तरीके से देखती हैं?
देखिए, जो कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स हुए कि हमारे को इसमें जाने, हमारे को पेपर्स पूरे नहीं मिले, अभी मिले हैं, उसको पढ़ने की टाइम है, तो टाइम बाइंग की एक स्ट्रैटेजी रही है और वो रहेगी बीजेपी की तरफ से। उनको टाइम चाहिए, तुरंत ट्रस्ट वोट नहीं लेना है। और आज जैसे मैं कह रही थी, आज की सिचुएशन ऐसी है कि ट्रस्ट वोट बहुत डाइसी हो जाता है बीजेपी के लिए, लेकिन कल क्या होगा मालूम नहीं है। और इस साइड का तो यही था कि रातों रात हो गया, जब हम सब चीज तैयार हो गई थी हमारी, तो इतनी जल्दी क्या थी, क्यों रातों रात किया गया, गवर्नर का क्या रोल था, हिटमैन की तरह, बीजेपी के हिटमैन की तरह वो पेश हुए, तो ये सब न्यायिक तरीके से, कौन संवैधानिक तरीके से सही नहीं हुआ है। और बेस्ट रास्ता है कि तुरंत ट्रस्ट वोट कराया जाए। ये बात में तो दम है ही कि क्लीनेस्ट वे आज की सिचुएशन है कि जल्दी से जल्दी आप ट्रस्ट वोट करा दो, सिचुएशन क्लियर हो जाएगी, सरकार बन जाएगी या नहीं बनेगी, दूसरे को चांस मिलेगा, या प्रेसिडेंट रूल होगा, या आगे जाके इलेक्शन होंगे, बस रास्ता खुल जाएगा। ये जो महीने भर से चल रहा है, और पता नहीं और लोग अगर आके देखें महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन तो मुझे याद नहीं आ रही है, थी एक दो तीन बार हुआ है, लेकिन ये तो मुझे लगता है गेम थ्योरी की स्टडी का एक क्लासिक एग्जांपल बन जाने वाला है कि कैसे पावर को जीता जाए या हारा जाए, क्या किया जाए, वो तो अलग चीजें हो जाती हैं।
महाराष्ट्र के मामले पर कल सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। अधिक जानकारी दे रही थी वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी।
दिन भर शॉर्टवेव 31 और 25 मीटर बैंड यानी 9460, 9510, 11795, 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
रुख करते हैं झारखंड का, जहां विधानसभा चुनाव के पहले चरण का चुनाव 30 नवंबर को होना है, लेकिन उससे पहले कल और परसों लातेहार और पलामू में हुए माओवादी हमले में 4 लोगों की जान जा चुकी है। लातेहार में माओवादी हमले में कम से कम 3 पुलिसकर्मियों की मौत हुई है। अधिक जानकारी के लिए मैंने झारखंड में मौजूद रवि प्रकाश से बात की।
ये दरअसल 22 तारीख की शाम की घटना है। एक लातेहार जिले का एक थाना है चंदवा। चंदवा थाने के पास में जो पीसीआर वैन में पुलिस वाले होते हैं, वो एक पीसीआर वैन खड़ी थी और वो लोग गश्ती पे निकले हुए थे, और उनकी वैन खड़ी थी, तभी क्या हुआ, नक्सलियों ने, वो बाइक से आए थे, नक्सलियों का एक पूरा गिरोह था जिसमें आठ दस लोग थे, उन लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। तो जितने भी लोग थे उसमें, मतलब चार इंक्लूडिंग ड्राइवर, चार लोग पुलिस कर्मी जो थे वो उसमें मारे गए, उनकी मौत हो गई। तीन लोग तो घटनास्थल पे ही मारे गए और चौथा जो पुलिस वाला था वो रास्ते में अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मौत हो गई। और इसके बाद क्या हुआ कि पुलिस के लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि अचानक से कोई घटना हो जाए और उनको घेर के मार दिया जाए। एक पुलिस वाला उसने बच पाया क्योंकि वो बाहर था गाड़ी के, तो उसने भागकर थाने में बात बताई तो लोग जान पाए कि हाँ ये एक बड़ी घटना हुई है। और इसका एक बड़ा कनेक्शन यह है कि उसी दिन उसी इलाके में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब, उनकी सभा थी, उनकी सभा के कुछ ही घंटे बाद ही घटना हुई है। और कल मतलब 23 तारीख की शाम को जो पलामू का इलाका है जहां कल प्रधानमंत्री जी की सभा होनी है, उस इलाके में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता थे और वो उनकी पत्नी जो है वो प्रखंड प्रमुख भी हैं, वो जा रहे थे अपने कुछ लोगों के साथ। तो वहां भी अज्ञात लोगों ने घेर के मारा और मार के मतलब गोलियां चलाई जिनमें दो लोग मारे गए। और वहां पे पर्चा मिला पुलिस को जिसपे लिखा हुआ था कि भाई चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए, ये माओवादियों के द्वारा डाला गया पर्चा था। तो पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है कि साहब ये दूसरी घटना जो है वो भी उसका कोई कनेक्शन माओवादियों से है कि नहीं, या ऐसे ही किसी ने पर्चा डाल दिया ये, या ये आपराधिक घटना है, तो इसकी जांच पुलिस अभी कर रही है।
इलेक्शन से पहले किस किस तरीके की सुरक्षा की तैयारियां हैं रवि, हमें थोड़ा बताएं, क्योंकि पहले चरण का चुनाव अब नजदीक ही है।
देखिए पहले चरण का चुनाव 30 तारीख को है, तो इस इन घटनाओं के बाद हुआ क्या है कि चुनाव आयोग ने एक विशेष पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। तो एमपी दास है जो रिटायर्ड डीजीपी हैं मणिपुर के, उनको यहाँ भेजा गया है, वो रांची आ गए हैं और उन्होंने मीटिंग वोटिंग की है कि पुलिस किस तरीके से सुरक्षा करेगी चुनावों के दौरान। तो पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई है अपनी, पुलिस थोड़ी सतर्क है, लेकिन काफी काम करना पड़ेगा पुलिस को अगर उसको चुनाव निष्पक्ष कराना है और शांतिपूर्ण तरीके से कराना है। तो
ये थे रवि प्रकाश। वहीं छत्तीसगढ़ के सुकमा में कल पुलिस एनकाउंटर में 3 नक्सलियों की मौत हो गई। इसके बाद आज दंतेवाड़ा में माओवादी हिंसा की खबर है। पूरी जानकारी दे रहे हैं रायपुर से हमारे सहयोगी आलोक पुतुल।
बस्तर के इलाके में संदिग्ध माओवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान लगातार जारी है। शनिवार को पुलिस ने सुकमा जिले में मुठभेड़ की 2 अलग अलग घटनाओं में 3 संदिग्ध माओवादियों के मारे जाने का दावा किया था। इसके अलावा 3 माओवादियों की गिरफ्तारी भी हुई थी। पुलिस ने कुछ लोगों के आत्मसमर्पण की भी बात कही थी, लेकिन पुलिस के इन दावों के बीच संदिग्ध माओवादियों की हिंसक कार्रवाइयां लगातार जारी हैं। दंतेवाड़ा के किरंदुल में भारत सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की खदान है। इसी खदान में सड़क बनाने के लिए पेड़ों की कटाई की जा रही है, जिसका माओवादी विरोध कर रहे हैं। रविवार को सड़क निर्माण और कटाई का काम चल ही रहा था, उसी समय बड़ी संख्या में संदिग्ध माओवादियों ने इलाके की पहले घेराबंदी कर ली और सड़क निर्माण और कटाई में लगे लोगों को वहां से भगा दिया। इसके बाद टिप्पर, डोजर और जेसीबी मशीनों में माओवादियों ने आग लगा दी। हमारी इलाके के पुलिस अधिकारियों से बातचीत हुई, उनका कहना था कि कम से कम 9 गाड़ियां जलकर खाक हो गई हैं। एक दिन पहले भी नारायणपुर इलाके में संदिग्ध माओवादियों ने इसी तरह सड़क निर्माण में लगे 5 ट्रकों में आग लगा दी थी। इधर संदिग्ध माओवादियों ने एक बयान जारी कर अपने मिलिट्री कमीशन की ओर से ऐसी और हिंसक कार्रवाइयों की चेतावनी दी है।
झारखंड और छत्तीसगढ़ में माओवादी हिंसा।
बीबीसी हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां,
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच।
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना।
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
अब रुख एक अंतर्राष्ट्रीय खबर का। फ्रांस में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते हिंसक अपराधों के चलते वहां के लगभग 70 शहरों में आज प्रदर्शन आयोजित किए गए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर इस समस्या के प्रति अपनी आंखें मूंदने का आरोप लगाया है। घरेलू हिंसा से निपटने के लिए फ्रांस की सरकार कल कुछ उपायों की घोषणा कर सकती है। पूरी रिपोर्ट सुनिए तन्वी से।
फ्रांस के कई शहरों में महिलाओं पर होने वाली हिंसा के विरोध में आम लोगों ने सड़कों पर उतरकर आज प्रदर्शन किया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फ्रांस के करीब 70 शहरों में ऐसे प्रदर्शन देखने को मिले हैं। इनमें 30 जगहों पर सड़कों पर मार्च भी देखने को मिली है। इस प्रदर्शन में फ्रांस के कई नागरिक संगठनों ने हिस्सा लिया है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में ये विरोध प्रदर्शन काफी दमदार तरीके से नजर आया। शहर के बीचों बीच स्थित मौजूद ओपेरा से रैली की शुरुआत हुई और देखते ही देखते सेंट्रल पेरिस का पूरा इलाका पर्पल कलर पोस्टर बैनरों से भर गया। मार्च का नेतृत्व नेशनल यूनियन ऑफ फेमिसाइड फैमिलीज की ओर से किया गया। यूनियन के मुताबिक सरकार इस समस्या पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। फ्रेंच में नूतुता यानी ऑल ऑफ अस हैशटैग से प्रदर्शनकारी और लोगों को इस मार्च में जुड़ने का सहयोग मांग रहे हैं। गिल्टी स्टेट अकम्प्लिश जस्टिस यानी सरकार दोषी है, हमें इंसाफ चाहिए, प्रदर्शनकारी ऐसे नारे लगाते हुए पेरिस में आज देखे गए। दरअसल पश्चिमी यूरोप में घरेलू हिंसा में हत्या के सबसे अधिक मामले फ्रांस में होते हैं। यकीन करना भले ही मुश्किल हो, लेकिन इसी साल कम से कम 115 महिलाओं की हत्या उनके पार्टनर या एक्स पार्टनर ने की है, यानी हर तीसरे दिन एक महिला की हत्या उसके करीबी पुरुष मित्र कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन के आंकड़ों की एजेंसी यूरो एस्टेट के मुताबिक 2017 में पुरुष मित्रों ने 123 महिलाओं की हत्या की थी। फ्रांस सरकार घरेलू हिंसा को लेकर नए प्रावधानों का ऐलान कल कर सकती है। सरकार पर कारगर नीति बनाने के लिए दबाव बनाने की कोशिशों के लिहाज से इन प्रदर्शनों को देखा जा रहा है।
फ्रांस में महिलाओं पर हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। और अब समय है खेल समाचारों का।
It's a fiver for Umesh Yadav, consecutive win by an innings and first team to do.
जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, ये जश्न है भारतीय टीम का बांग्लादेश के खिलाफ जीत का, और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आदेश कुमार गुप्त।
जी हाँ शाहिद, जिस तरह का जोश आपकी आवाज़ में है, ऐसा लगता है कि हमारे श्रोताओं को ये एहसास हो गया कि ये जीत कितनी ज़बरदस्त रही है। और एक पारी और 46 रन से लगातार जिस तरह से भारत जीत के रथ पर सवार है और लगातार चौथा टेस्ट मैच पारी के अंतर से जीता है, ये टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक रिकॉर्ड है।
और पहला डे नाइट टेस्ट मैच था।
जी हाँ बिल्कुल, गुलाबी रंगत। हालांकि जो दर्शकों की बात है, एक तरह से उन्होंने चार दिन के जो टिकट खरीदे थे वो थोड़ा सा उनको तकलीफ रही होगी। और इससे पहले कि इस मैच पर हम ज्यादा चर्चा करें, क्यों ना सुन ले कोलकाता में ही मौजूद रहे पूर्व टेस्ट क्रिकेटर अशोक मल्होत्रा को, जो भारतीय टीम के सिलेक्टर भी रहे।
कहते हैं ना, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, क्योंकि बांग्लादेश की टीम 20-21 साल से टेस्ट क्रिकेट का स्टेटस मिला, अभी तक अपनी छाप नहीं बना पाई। और गुलाबी टेस्ट जरूर था, उसकी का ही थोड़ा क्रेज था, ऐसा उसको बेचा गया कि भीड़ जरूर इकट्ठा हुई, लेकिन मैच में कोई रोमांच की अपेक्षा किसी को नहीं थी। तीन दिन में खत्म होने की अपेक्षा कर रहे थे और बांग्लादेश ने उससे भी बेहतर काम किया कि ढाई दिन में मैच को खत्म कर दिया, तो अपने आप दर्शाता है कि बांग्लादेश को अभी काफी कुछ सीखना। और ये बिल्कुल एक बहुत बड़ी टीम और एक बहुत साधारण
आदेश जी, मल्होत्रा जी तो बड़े मायूस से नजर आ रहे हैं।
देखिए मायूसी की बात इसलिए भी है, देखिए कि जो बांग्लादेश की पहली पारी 106 रन पर ऑल आउट हुई, हालांकि उनके गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की, भारत को 347 रन पर रोका, लेकिन दूसरी पारी में भी आप ये देखिए कि 195 रन पर ऑल आउट हो गए। टीम मुशफिकुर रहीम ने 74 रन बनाए, महमूदुल्ला 39 रन बनाकर रिटायर्ड हट हुए, अलमीन हुसैन ने 21 और बेदी हसन ने 15 और तैजुल इस्लाम ने 11 रन बनाए, जो बताता है कि बाकी बल्लेबाज तो 2 के अंक तक भी नहीं पहुंचे। और भारत के जो ईशांत शर्मा है उन्हें बैट ऑफ द मैच घोषित किया गया, जिन्होंने 56 रन देकर 4 विकेट लिए, उमेश यादव ने 53 रन देकर 5 विकेट लिए। और इस टेस्ट मैच में ये भी देखने को मिला कि गुलाबी गेंद का जो ये प्रयोग था ये बांग्लादेश को रास नहीं आया,
लेकिन हमारे कप्तान को तो रास आया।
जी हाँ बिल्कुल, जो जीत के रथ पर सवार हैं। और दरअसल ये बताता है कि कितना बड़ा अंतर अब भारत और दूसरी टीमों में, खासकर अगर बांग्लादेश की बात की जाए, उनके किन कई खिलाड़ियों के हेलमेट पर भी चोट लगी, एक हल्की सी नोकझोंक भी हुई हर्षा भोगले और संजय मांजरेकर के बीच, जब हर्षा भोगले ने कहा कि खिलाड़ियों से पूछा जाना चाहिए, तो संजय मांजरेकर ने चुटकी लेते हुए कहा आप तो क्रिकेट खेले नहीं है, तो खिलाड़ियों से ही पूछना पड़ा। खैर ये सब चलता रहता है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया ने भी पाकिस्तान को ब्रिस्बेन खेले गए पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन आज एक पारी और 5 रन से हराया। पाकिस्तान ने पहली पारी में 240 रन बनाए, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 580 रन बनाए। पहली पारी के आधार पर 340 रन से पिछड़ने के बाद पाकिस्तान की दूसरी पारी 335 रन पर समाप्त हुई। बाबर आजम ने 104 और मोहम्मद रिजवान ने 95 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड ने 63 रन देकर 4 और मिचेल बाश ने 73 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। और एक खबर बैडमिंटन के कोर्ट से, जहां कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जापान के कांता सुनेयामा ने चीन के लिंडेन को 24-22 21-12 से, और महिला एकल वर्ग का खिताब दक्षिण कोरिया की एनसी यंग ने अपनी ही हमवतन संगजी ह्यून को 21-13 21-17 से हरा कर अपने नाम किया।
बहुत बहुत शुक्रिया खेल समाचारों के लिए आदेश कुमार गुप्त जी। वक्त हो चला है कार्यक्रम की समाप्ति का, लेकिन चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर तन्वी से।
सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ ने फडणवीस और पवार को विधायकों के समर्थन का पत्र और राज्यपाल की चिट्ठी पेश करने को कहा है। इस मामले में केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार, फडणवीस और अजीत पवार को नोटिस भेजा गया है। अब अगली सुनवाई कल सुबह 10:30 बजे होगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता कैलाश जोशी का आज भोपाल में निधन हो गया। हांगकांग के स्थानीय जिला परिषद चुनाव में आज बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। लैटिन अमरीकी देश यूरुग्वाय की जनता आज राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर का मतदान कर रही है। पोप फ्रांसिस ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को मानवीय गरिमा के खिलाफ अपराध बताया है। उन्होंने हिरोशिमा में आज परमाणु हथियारों के उन्मूलन के लिए एक भावुक अपील की। पाकिस्तान के अधिकारियों ने कहा है कि वे पोलियो उन्मूलन टीकाकरण के खिलाफ सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों को रोकने के लिए नया रास्ता अपना रहे हैं। बीबीसी समाचार।
आज के कार्यक्रम में इतना ही। स्टूडियो का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे अजीत सारथी। आपसे अब अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। तब तक आपके साथ है हमारी वेबसाइट bbchindi.com। सभी सहयोगियों के साथ मोहम्मद शाहिद को दें अनुमति। नमस्कार।